नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। कृपया सभी भक्तगण श्लोक को मेरे पीछे दोहराएंगे। भगवान उवाच अशोच्यान् वसोचस्त्वम् नानुशोचन्ति पंडिता। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। इन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। इन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ओम अज्ञान तिमिरान घस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सर्वे हरिभक्तों का आज के श्रीमद् भगवद् गीता क्लास में हार्दिक स्वागत करते हैं और पधारने के लिए खूब खूब धन्यवाद। तो गुरु गौरांग एवं विशेष रूप से श्री प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ कहने का एकमात्र विनम्र प्रयास है, और इस विनम्र प्रयास में इस दास से वाणिकीय दृष्टि से भाषा की दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टि से या किसी भी प्रकार से त्रुटि हो जाए तो आप सर्व भक्तगण मुझे अपना दास समझ करके एक वात्सल्य पूर्ण दृष्टि से क्षमा करिएगा, यही प्रार्थना करता हूँ आप सर्वे हरिभक्तों के चरणों में। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रवचन को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के ग्यारहवें नंबर के श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बोलने का प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक के प्रारंभ में श्री वेदव्यास महाराज जी लिख रहे हैं, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने कहा। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर इसलिए कहते हैं, भगवान उवाच शब्द जो है वह एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता जो है वह भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वेदव्यास महाराज जी ने भी इधर लिखा क्या, श्री भगवान उवाच। तो भगवान उवाच कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और कृष्ण मतलब श्री भगवान। तो कलयुग का सबसे बड़ा झगड़ा जो है कि भगवान कौन है वह ना हो, इसलिए वेदव्यास महाराज जी इधर लिख रहे हैं कि श्री भगवान उवाच। पूरी दुनिया जानती है कि श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण कही है श्री कृष्ण ने, और वेदव्यास महाराज जी भी क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान उवाच। अर्थात भगवान कौन है, श्री कृष्ण। तो अभी तक जितने भी श्लोक थे उसमें भगवान श्री कृष्ण ने खास कुछ कहा नहीं है, और बहुत सारे विद्वान एवं आचार्यों का ऐसा मानना है कि ग्यारहवें नंबर के श्लोक से श्री भगवान उवाच, लेकिन भगवान उवाच वास्तव में पहले हो चुका है ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है, कलव्यम अनार्यजुष्टम, है ना, ये सब अनेकों नामों से संबोधित भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कब किए थे, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये तेरी बात है, कि ये जो तेरा विचार है वह कैसा है, अनार्य। आर्य लोग कभी ऐसा सोचते नहीं है। तो भगवान उवाच द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में हो चुका है, फिर भी वेदव्यास महाराज जी एवं अनेक विद्वानों एवं अनेक आचार्यों का ऐसा मानना है कि भगवान उवाच शब्द जो है, अर्थात भगवान उवाच ग्यारहवें नंबर के श्लोक से प्रारंभ हुआ है, वह इसलिए क्योंकि अभी तक भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का जो संबंध है ना, वह मित्र के रूप में था। किसके रूप में, मित्र के रूप में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संबंध मित्र के रूप में था। हाँ, अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों मित्र थे, और अब वह दोनों क्या हो गए हैं, गुरु और शिष्य, संबंध चेंज हो गया। सातवें नंबर के श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया आप मुझे ज्ञान प्रदान करिए। क्या, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करिए। तो मित्रता का जो संबंध था न, वह गुरु शिष्य के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। मित्रता का संबंध गुरु शिष्य के संबंध के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए अब भगवान श्री कृष्ण बोलने का जो प्रारंभ करते हैं ने, वह अर्जुन को ज्ञान देने जा रहे हैं। और इसके पहले अमुक श्लोक ऐसे है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कुछ झाँकी थी। भगवान बोले है, मनो संजय उवाच, श्लोक संजय बोल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कौन बोल रहे हैं, श्री कृष्ण, है ना। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कहा। तो मुख्य वक्ता संजय थे, गौण वक्ता कृष्ण। इसी तरह पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के शुरुआत में अमुक श्लोक है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी का कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट की गई है, और कभी कभी भगवान अर्जुन के साथ मजाक भी कर लेते है ना। वो अर्जुन को कहते कि तू ये जो वध कर रहा है ना, वह ठीक नहीं है, ये अनार्य है। अर्जुन तू आर्य है, आर्य व्यक्ति कभी भी अनार्य जैसी चर्चा नहीं करता। तो बस इतना ही, लेकिन किसी भी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। तो जब मित्रता का संबंध था तब मित्रता के रूप में बात की, और अर्जुन ने जब गुरु के रूप में धारण कर लिए भगवान श्री कृष्ण को, फिर इसके बाद पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण हंसते हंसते अर्जुन को कुछ कह रहे हैं। तो भगवान क्यों हंसे उसके अमुक कारणों की चर्चा हमने कल सुनी है कि भगवान जो हंसे, उन्होंने जो स्माइल दिया उसका कारण क्या था, और उनके हंसने के बाद अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं श्री भगवान वाचा। तो कहते हैं भगवान ने अर्जुन को पहले किस नाम से संबोधित किए, कौन्तेय, पार्थ, ऋषिकेश, गुडाकेश, है ना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह अनेकों अनेकों नामों से संबोधित किए, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एक अलग, एक डिफरेंट नाम अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहे हैं। क्या है वह? पंडित। क्या प्रभु जी? पंडित। यहाँ अर्जुन नहीं कहा, यहाँ क्या कहा? पंडित। तो सोचिए कि क्या अर्जुन वास्तव में पंडित थे? कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या वो गांडीव लेके कथा करने के लिए गए थे? तो अर्जुन जाति से भी पंडित नहीं है और वेश से भी पंडित नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू पंडित जैसी बातें कह रहा है। हाँ, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है ना तात्पर्य में कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तेरी बातें पंडित जैसी है। तो पंडित क्यों कह रहे हैं? कोई एंगल से तो अर्जुन पंडित थे नहीं, लेकिन अर्जुन ने पिछले दोनों अध्याय में, मतलब कि दूसरे अध्याय के शुरुआत में और पहला अध्याय पूरा, जिसमें जीतने जीतने तर्क अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रजू किए युद्ध नहीं करने के लिए कि ये होगा न वो होगा न, लोग ऐसा कहेंगे, धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा, तो इस प्रकार की जितनी भी चर्चा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने की, जो तर्क दिए भगवान श्री कृष्ण को, वो तर्क देने का कार्य संसार में किसका है? पंडितों का है ना। तर्क कौन देता है? पंडित। तो अर्जुन ने इतने सारे तर्क भगवान श्री कृष्ण के सामने रजू किए, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन वास्तव में तो तू पंडित हो गया है, वो बातें तो पंडित जैसे कर रहा है। वो जो पंडित जो होता है ना, वह बोलने में बहुत कुशल होता है, बातें करने में बहुत होशियार होता है, उसको पंडित कहते हैं, विद्वान। तो अर्जुन का ये जो पांडित्य है वो भगवान श्री कृष्ण को मंजूर था नहीं। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू बातें पंडित जैसे कर रहा है, लेकिन वास्तव में तू पंडित है नहीं, तेरी सिर्फ बातें पंडित जैसी है लेकिन तू पंडित नहीं है। तो भगवान ने इधर साबित किया कि तू भले ऐसी बातें करे, तेरी ऐसी बातों से प्रभावित हो जाऊं ऐसा मैं नहीं हूं। कि तूने ये सब तर्क रजू किए कुछ राजनीति से, कुछ धर्म नीति से या कुछ समाज नीति से, तो भगवान कहते हैं कि मुझे इसमें कोई रस नहीं है। हाँ, तेरी बात तो सब सत्य है। ये बात शायद कृष्ण कहते अर्जुन को कि तू संसार में जाकर के ये बात किसी के सामने कहेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, सभी लोग तेरी बातों को स्वीकार करेंगे कि भाई भाई की बात सही है, कि परिवार लोगों को मारना नहीं चाहिए जिससे कुल धर्म का नाश होता है, इसको उनको जाने देना चाहिए, थोड़ा बहुत छोड़ देना चाहिए, तो लोगों को ऐसी बात में आनंद आएगा कि नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ऐसी देवी संगीत में रस नहीं है। क्यों नहीं है? वह आज अपने को इस श्लोक में समझने का है, क्योंकि अर्जुन के जो तर्क है ना, वह तो एकदम बुद्धिमान व्यक्ति जैसा है, और उनके प्रत्येक तर्कों में अपने को ऐसा ही लगता है कि अर्जुन की तो बात तो सत्य है, कि सही बात है, कि वृद्धों को नहीं मानना चाहिए कि जिससे कुल धर्म का नाश होता है, तो ठीक है, वृद्ध वृद्ध लोगों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ और कह रहे हैं। अर्जुन के सारे तर्कों को जिस तरह समुद्र के तट पर बनाया गया मिट्टी का मकान समुद्र की एक ही लहर से कुछ ही क्षणों में टूट जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे तर्कों को तोड़ डाले, मैंने एक ही बात पे तोड़ डाला। क्या कहा भगवान ने? अशोचान वशोचस्त्वम प्रज्ञावादान च भासते, कि अर्जुन तू बोल रहा है वास्तव में प्रज्ञावादान च भासते, पंडित जैसा बोल रहा है लेकिन तेरी बातें जो है वो पंडित जैसी है नहीं। तो भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन तू जो बोल रहा है वह पंडिताई नहीं है, वास्तविक पंडिताई क्या है वह मैं तुझे बताऊंगा। यह कहते हैं प्रज्ञावादांश, तेरी बातों में विद्वत्ता नहीं है। कारण तो कारण भगवान ने बताया है कि एक पंडित जीवित अथवा मृत है ना, कि जिसके लिए शोक नहीं करने का है उसके लिए पंडित कभी शोक करता नहीं है, लेकिन तू कर रहा है। अर्जुन को कहा कि तू शोक कर रहा है किसके लिए? तो कहते ये सब लोग जीवित खड़े हैं, अभी तक मरे नहीं है, जीवित खड़े हैं उसके लिए शोक कर रहा है, और मरने का तो बाकी है इन सब लोगों को, तो तुझे अभी सही शोक हो रहा है कि अरे रे ये सब लोग मर जाएंगे, तो तेरी बात जो है ना इसमें मुझे कोई दम लग रहा नहीं है। भगवान ने काप डाली अर्जुन की बात का, अर्जुन की सारी बातों को खंडन कर दिया भगवान ने। तो एक पंडित का कर्तव्य क्या है? इस श्लोक में ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तविक पंडित कौन है। वास्तविक पंडित वह है कि संसार में जिसके लिए शोक नहीं करने का है उसके लिए वह व्यक्ति कभी शोक करता नहीं है, ये वास्तव में पंडित है। और अर्जुन इस विपरीत कार्य, अर्जुन की बातें तो पंडित जैसी है लेकिन कार्य पंडित जैसा नहीं है, तो वह नहीं जानते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को बताया कि पंडित किसे कहते हैं। तो अभी तक भगवान मित्र की भूमिका में थे, अभी भगवान गुरु की भूमिका में आ गए हैं, गुरु बन गए हैं। तो कोई भी गुरु होता है इस संसार में, वह गुरु की सर्वप्रथम भूमिका क्या होनी चाहिए? गुरु का प्रथम कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो गुरु का प्रथम कर्तव्य है जो श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं, या शिष्य की कमी जो होती है, शिष्य के अंदर दोष जो होते हैं वो सबसे पहले इसको दिखाना, ये है गुरु की सर्वप्रथम योग्यता। सही गुरु है या गलत गुरु है इसकी पहचान किससे होती है मालूम है? इसके ऊपर से ही। तो गुरु की सर्वप्रथम योग्यता यह है कि शिष्य की वास्तविक कमी, शिष्य के अंदर जो दोष है वो दोष उसको दिखाना। देखिए जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में ग्रहण कर लिया तो कृष्ण ने सबसे पहला कार्य क्या किया? अर्जुन की कमी दिखाई कि अर्जुन तू पंडित जैसी बातें कर रहा है लेकिन तू वास्तव में पंडित है नहीं, सबसे पहली कमी है। यह है गुरु की सर्वप्रथम योग्यता। और अभी के गुरु क्या सोचते हैं मालूम है? शिष्य की वास्तविक कमी दिखाते नहीं है, डांटते नहीं है उनको, डर लगता है कि शायद चेला भाग जाएगा। तो गुरु में डर नहीं होता है। और सही गुरु है या गलत गुरु है इसकी पहचान किससे होती है? इसी से ही, कि जो शिष्य को कमी दिखाता है। क्यों दिखाता है कमी? क्योंकि वह शिष्य को आगे शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, उसको आगे प्रगति कराना चाहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण आचार्य गण प्रस्तुत करते हैं कि एक शिल्पकार था, शिल्पकार कि जो मूर्तियों का निर्माण करता है। तो उस शिल्पकार के मन में ऐसा था कि मैं तो मूर्तियों बनाता हूँ लेकिन मेरा जो सुपुत्र है वह ऐसा शिल्पी बने, ऐसा कारीगर बने कि उसकी बनाई गई मूर्तियों में और जीवित व्यक्तियों में कोई अंतर ना दिखाई दे। तो ऐसा तैयार करने के लिए उसने उसके पुत्र को कहा कि तू मूर्तियों बनाना सीख, उत्तम से उत्तम शिक्षा उसको प्रदान की और वह मूर्ति बना कर लेके आया उसके अपने पिताजी के पास। वह तो पिताजी ने उसमें मिस्टेक दिखाई और कहा फिर से मूर्ति बना। तो बहुत मेहनत करके फिर से उसने मूर्ति बनाई तो फिर भी पिताजी ने कहा कि अभी भी इसके अंदर मिस्टेक है, वापिस बना।
फिर वापस बना के अपने पिताजी को दिखाया कि देखे पिताजी ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक है। तो पिताजी ने उसमें भी मिस्टेक दिखाई, उसमें भी कमी ढूंढी। तो अनेकों अनेकों बार ऐसा किया गया। तो बाद में तो वह बहुत परेशान हो गया और उसने एक बार अपने घर में एक उसके मित्र को बुलाया और मित्र को बुला करके उसको कहा कि अब मैं 10 मूर्तियों का निर्माण करूँगा। किसकी मूर्ति बनाऊँगा? अपने खुद की, स्वयं की। और उस 10 मूर्तियों में 9 मूर्ति होंगी और उसमें एक मैं स्वयं खुद होंगे, मैं स्वयं एक खुद होऊंगा। तो तुझे पहचानना है बिना स्पर्श किए कि इसके अंदर ओरिजिनल कौन है और डुप्लीकेट कौन है, कि रियल मूर्ति कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है। लेकिन स्पर्श किए बिना ये शर्त है। तो 9 मूर्तियों का निर्माण किया उसने और 9 मूर्तियों के बीच में वह जाके खड़ा हो गया। एज इट इज सब कुछ सेम, कपड़े सेम, कलर सेम, सब कुछ सेम, कोई फर्क ना कोई दिखा सके इस तरह। और उसका मित्र आया, वह देखने लग गया एक एक बार मूर्तियों को। और वह शिल्पकार था, वह भी देख रहा था कि ये क्या कह रहा है। तो उसके मित्र ने एक दिमाग लगाया, एक युक्ति लगाई। उसने कहा कि ये दूसरे नंबर की जो मूर्ति है ना, इसमें कोई मिस्टेक है। इतना सुनते ही वो बोल पड़ा शिल्पकार कि मेरी बनाई गई मूर्ति में कभी कोई मिस्टेक हो नहीं सकती। फिर तब उसके मित्र ने आकर कहा कि देख कि तेरी कारीगरी में तो कोई मिस्टेक थी नहीं पहले से ही, वो मुझे मालूम था। लेकिन तेरे अंदर जो अहंकार था तेरे अंदर कि एक सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण मैं कर सकता हूँ, उस अहंकार के कारण आज यहाँ तेरी पहचान हो गई। लेकिन इस 10 मूर्तियों में से मैं भी नहीं पहचान पा रहा था कि तू कौन है। वास्तव में तेरी कारीगरी में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक अहंकार, एक कमी के कारण। यह अहंकार दूर करने के लिए तेरी मूर्ति सुंदर थी, फिर भी मैंने उसमें कमी दिखाई। इस तरह हमारा कार्य, शायद हमको लगे, हमको यदि लगता हो कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, बहुत मैंने ऐसा किया वैसा किया, इतना सारा प्रचार किया, लेकिन ये लोग मेरी वैल्यू करते नहीं है। ये सब संसार में चल रहा है ना, ये सब कमी है क्या? ये सब कमी है। और जब कोई कमी हमको दिखाता है ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको यदि कोई कह दे कि तुम अहंकारी हो, तो मुझे अहंकारी कहा। तो अपनी खुद की कमी व्यक्ति कभी भी नहीं देख सकता, इसलिए वह गुरु दिखाता है। देखो, देखिए इधर कि अर्जुन भी वही मान रहा था, वही समझ रहा था कि मैंने जो कहा सब सत्य है, सब राइट है। लेकिन भगवान कृष्ण ने सब कुछ गलत साबित करके दिखा दिया कि अर्जुन तूने जितना भी कहा है इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है मैं तुझे अभी दिखा रहा हूँ। और गुरु जो है ना, गुरु शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में दिया गया है कि गुरु शब्द का अर्थ होता है भार। क्या अर्थ होता है गुरु शब्द का? भार, वजन, भार। कि भार मतलब वो नहीं कि गुरु कितने वजनदार है, कितने मोटे हैं, ऐसा नहीं। भार का अर्थ है कि गुरु जो अपने को स्वीकार करना है, तो गुरु अपने को जो कमी दिखाए उस कमी को स्वीकार करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। यह है शिष्य की सर्वप्रथम योग्यता। और हमको क्या होता है? गुरु भार मतलब शिष्य के ऊपर गुरु भारी रहते हैं। क्यों? उसकी कमी दिखाने के लिए। हाँ, एक वास्तविक गुरु उसके शिष्य को कमी दिखाएंगे कि तेरे अंदर ये मिस्टेक है, तब तो शिष्य को इतना दुख लगता है ना कि इतनी सारी मैंने गुरु की सेवा की, फिर भी गुरु मेरे में कमी दिखा रहे हैं, मेरे अंदर दोष ढूंढ रहे हैं। हाँ, हर हमेश के लिए गुरु जो भी कमी दिखाए ना, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये शिष्य का प्रथम कर्तव्य है कि जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए। तो क्या हम लोग हमारी कमी को स्वीकार कर सकते हैं? हमारी कमी यदि कोई हमें दिखाए तो वह हमारा दुश्मन हो जाता है। गुरु की तो बात ही छोड़ दो, है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी जब क्रोध करते थे ना अपने शिष्यों पे, प्रभुपाद जी ऐसा चिल्लाते, ऐसी डांट फटकार लगाते अपने शिष्यों पे कि उस समय किसी शिष्य में हिम्मत नहीं रहती थी कि प्रभुपाद जी के सामने देखे, कि प्रभुपाद जी के सामने मुंह उठाकर देखे। इतना प्रभुपाद जी चिल्लाते थे, इतना चिल्लाते थे भक्तों उनके शिष्य को, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि मैं गुरु बना हूँ किसके लिए, तुम लोगों के लिए। हैं प्रभुपाद जी कहते मुझे मालूम है भक्ति कैसे करनी, भगवत धाम जाने का रास्ता मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गुरु बना हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की प्रगति हो, तुम लोगों की उन्नति हो, इसलिए मैं कड़क भाषा में तुम लोगों को शिक्षाएं प्रदान करता हूँ। और उन फॉरेनर शिष्यों ने स्वीकार किया, तो स्वीकार किया जिन लोगों ने, तो उन लोगों का आज परिणाम देखिए, सन्यासी हो गए हैं ना। हाँ, उस समय के 20-25 साल के नवयुवान बालक आज सन्यास लेकर के संपूर्ण विश्व में प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते को लेकर के उनके ही ग्रंथों का प्रचार कर रहे हैं, उनकी वाणियों का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा दिखाई गई कमी को जीवन में धारण किया। तो जिन लोगों को प्रगति करनी है भक्ति में, उसे ये बात जीवन में हर हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, अपनी खुद की कमी को स्वीकार करना पड़ेगा जीवन में। और उसमें भी जब गुरु दिखाए ना, तो आँख बंद करके चुपचाप स्वीकार करना पड़ेगा। दुनिया के लाख लोग यदि आपको कहे कि प्रभु जी आप बड़े महान हो, लेकिन गुरु यदि ऐसा कहते हो कि तेरे में कोई लेना देना नहीं है, तो स्वीकार वही करना पड़ेगा कि मेरे में कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भले कहती हो कि आप बड़े महान हो, आप बहुत अच्छे हो, वह गलत है, शिष्य की यह योग्यता है। और अर्जुन को अब भगवान भारी पड़ रहे हैं। गुरु जो है, आचार्य गण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि गुरु जो है वह वास्तव में एक डॉक्टर की भूमिका में है। किसकी भूमिका में? डॉक्टर की। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सर्वप्रथम क्या करते हैं, रोग चेकअप करते हैं ना कि तुमको क्या रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कमी क्या है। डॉक्टर सर्वप्रथम ये चेक करते हैं, फिर वो दवाई देते हैं। सिर्फ रोग दिखा दे ऐसा नहीं, यदि हमको कह दे कि आपको कैंसर होने वाला है, आप नहीं रहने वाले, आप नहीं बच पाएंगे, ऐसा नहीं। डॉक्टर सिर्फ रोग नहीं दिखाते, वह पहले चेक करते हैं, फिर हमको कहते हैं कि आपको कैंसर होने वाला है, लेकिन मैं दवाई लिख के देता हूँ, आपको नहीं होगा। तो डॉक्टर उसमें रास्ता भी करते हैं ना, बीमारी भी वही सोचते हैं और उसका दूर करने का इलाज भी वही करते हैं दवा के माध्यम से। इसी प्रकार गुरु जो है शिष्य की कमी को देखते हैं, ढूंढते हैं, शिष्य की कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वह भक्त को शुद्ध बनाना चाहते हैं। हाँ, गुरु डॉक्टर की भूमिका में है कि सबसे पहले रोग का शोधन करते हैं, फिर उसको बाद रोग को दूर करते हैं। इसी प्रकार गुरु हर हमेशा के लिए यही प्रयास में रहते हैं कि मेरा शिष्य जो है उसको मैं किस प्रकार, किस तरह से, किस तरह, किस रास्ते से मैं उसको शुद्ध करूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप भी कराते हैं, लेकिन दवाई लेते नहीं है। ठीक आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही कुछ हो रहा है कि हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। सुना है ना गीता का श्लोक क्या, तद बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्तेन सेवया। गुरु के पास जाते हैं, फिर गुरु हमें ऐसा कहे कि भगवान का नाम का जप करिए, तुमको ऐसा करना है, चार नियमों का पालन करना है, ये नहीं करना है, लेकिन हम लोग गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करते नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति आगे प्रगति नहीं करती है। हाँ, हम लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ते। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में एक कथा आती है, नारद मुनि को जानते हो ना आप लोग, वो नारद मुनि के शिष्य कौन है, बहुत सारा, लेकिन उनके परम शिष्य कौन है, वेदव्यास महाराज। कौन? वेदव्यास जी महाराज। कि जब नारद मुनि जब वेदव्यास जी महाराज से मिले, नारद मुनि को मालूम था कि मेरा शिष्य इतना पावरफुल है कि उसने चार वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र और अनेकों अनेकों महाभारत, इस प्रकार अनेकों प्रकार के ग्रंथों की रचना की। मान लो इतना हमने लिख लिया हो तो हमारी अपेक्षा क्या रहती है हमारे गुरु के पास से। अरे इसके अलावा एक छोटा सा कार्य भी गलती से जीवन में हो गया ना, भाग्य से यदि, फिर भी हमको ऐसा लगता है, ऐसी आशा रहती है कि गुरु महाराज हमारा स्वागत करेंगे सबके बीच में और हरि बोल की ध्वनि से हमारा सम्मान करेंगे, ऐसी आशा रहती है गुरु के पास। तो वेदव्यास महाराज जी को सर्वप्रथम नारद मुनि ने आके यह कहा कि वेदव्यास जी कि आपने इतना सारा जो लिख दिया है ना, इससे पूरा संसार आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन ये आपका कार्य प्रशंसा के योग्य नहीं है, ये आपका कार्य निंदा के योग्य है। आपको क्या लगता है कि इतना सारा लिख करके आपने जगत के ऊपर क्या इतना महान बड़ा उपकार किया है? आपकी ये रचना के कारण ये संसार आपको बहुत बड़ी पदवी दे देंगे, आपको महान बना देंगे, लेकिन वास्तव में आपने मूर्ख जैसा कार्य किया है, वेदव्यास महाराज जी को कह रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के पिताजी। और अपने जैसे लोग वेदव्यास महाराज जी की तुलना में हमारी वैल्यू क्या है? फिर भी नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं, फिर भी हम ये ऐसा होना चाहिए वो ऐसा। और कहा नारद मुनि ने वेदव्यास महाराज जी को, सिर्फ कर्मी दिखाई ऐसा नहीं, आपने मूर्खता मूर्ख जैसा कार्य किया है और अब आपकी ये रचना पढ़ करके संसार के लोग इतने भ्रमित होने वाले हैं, इतने भ्रमित होने वाले हैं, इसका आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों को उस ब्रह्म में से दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा, भगवान की लीला, उनके नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना करिए। चिल्लाए नारद मुनि वेदव्यास महाराज जी को, जो कि वह भागवत के प्रथम स्कंध में ही ये कथा आती है। तो ये है वास्तविक गुरु। नारद मुनि एक वास्तविक गुरु की पोस्ट पर बैठे हैं, खुश नहीं हो गए डायरेक्ट कि वाह वाह मेरा शिष्य तो बहुत बड़ा महान, इतना महान है, अद्भुत है, इतना लिखा उसने, बाप रे बाप। अरे वह वेदव्यास महाराज जी पूरी जीवन भर मेहनत कर करके थक गए, लास्ट में तो उनके पास शक्ति भी नहीं थी लिखने की, इतना लिखा फिर भी कमी, नारद मुनि ने कमी निकाली, प्रशंसा नहीं की। तो फिर क्या गुरु लोगों को शिष्य को कमी दिखाते रहना चाहिए? नहीं। प्रश्न होता है ना कि गुरु लोगों को क्या शिष्य को कमी दिखाते रहना चाहिए? तो इसके लिए शास्त्र कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं नहीं। नारद मुनि ने कमी निकाली लेकिन फिर रास्ता भी दिखाया ना। क्या दिखाया? श्रीमद् भागवतम की रचना, जो जीवों का कल्याण करने वाला है, महान उपकार, वास्तव में कल्याण करने वाला है। इस तरह गुरुओं का कार्य है केवल दोष नहीं, लेकिन कृष्ण कथा के माध्यम से उसके शिष्य का पोषण करना। जिस प्रकार डॉक्टर रोग दिखाते हैं लेकिन रोग के साथ साथ उसका इलाज भी दिखाते हैं, तो गुरु ये कार्य करते हैं, शिष्य की कमी दिखाते हैं और उस कमी को किस प्रकार से दूर करना वह भी गुरु समझाते हैं। इसलिए गुरु जब कमी दिखाए ना, मुंह लटका करके भाग नहीं जाना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है, गुरु कभी कभी सभी भक्तों के बीच में डांट दे या कह दे कि तुम ठीक से सेवा नहीं करते हो, कि तुमको सेवा करने नहीं आता है, तो हमको बुरा लग जाता है एकदम से। इतने सारे लोगों के बीच में मुझे कहा, मुझे कहना था को रूम में बुला के अकेले में कहना था ना, कहना ही था, तो इतने सारे लोगों के बीच में कहने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, शिष्य ऐसा सोचता है ना उस समय ऐसा, कि सब लोगों के बीच में कहने की क्या आवश्यकता थी, मेरा अपमान कर दिया सबके बीच में, मेरा ये कर दिया। गुरु है तो क्या हो गया, रूम का दरवाजा लॉक करके कहना था ना कि तेरे में ये कमी है, ये अपना थर्ड क्लास विचार है एकदम, ऐसा होता है ना हमारे जीवन में। देखिए नारद मुनि ने वेदव्यास जी को रूम में नहीं बुलाया कि चले तो आश्रम में, आपका थोड़ा सा काम है। खुला जग जाहर में उनको डांटा। ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम में आया और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लोगों ने इस प्रसंग को जाना कि नारद मुनि ने वेदव्यास जी को
दांता मूर्ख कहा तो वो दरवाजे में बंद नहीं रखा, उस प्रसंग को लॉक करके नहीं रखा दरवाजे में। जग जाहिर प्रसंग है भक्तों भागवतम का। इस प्रकार गुरु यदि जाहिर में कह दे पब्लिकली तो इसको भी कृपा समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु हमको जो भी कमी दिखाते हैं ने उस पर हिट केवल हमारा है, गुरु का इसमें कोई स्वार्थ है नहीं। तो क्या गुरु को नहीं मालूम कि भक्ति कैसे करनी चाहिए? गुरु सब जानते हैं, लेकिन हमको शुद्ध करने के लिए, हमको एक अच्छा शिष्य बनाने के लिए वह गुरु हमारे अंदर कमी ढूंढते हैं, परीक्षा भी लेते हैं इस प्रकार से कई बार। तो फिर गुरु कैसे होते हैं, इसके पर आचार्य गण एक और उदाहरण कुम्हार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने ग्रंथों में। तो गुरु एक प्रकार से कुम्हार के जैसे होते हैं। कुम्हार क्या करता है, एक मिट्टी जो होती है उस मिट्टी को इस प्रकार मिट्टी का मिश्रण करता है और उसमें से अलग अलग प्रकार के बर्तनों का शेप देता है, आकार देता है बर्तनों को उसमें से। और वह जब बर्तन बनाता है उस समय की स्थिति पोजीशन क्या होती है, क्रिया क्या होती है, वह किस लोगों ने देखा है? अच्छा, तो वह कुम्हार जब बर्तन बनाता है तब क्या करता है, एक गोल राउंड होता है, एक पेड़ा होता है और इसके बीच में मिट्टी का एक कुंडा रखता है और वह अपने दोनों हाथों की करामत से इसके अंदर एक मटका एक कुंडा की जो भी बनाना हो वह वस्तु का निर्माण करता है। तो वह जब बनाता है उस समय की उस व्यक्ति की उसकी पोजीशन स्थिति क्या होती है, एक हाथ मटके के अंदर रहता है और एक हाथ ऊपर रहता है, एक हाथ मटके के अंदर और एक हाथ मटके के ऊपर। तो वह दोनों हाथों का कार्य क्या है, ऊपर का हाथ जो है उससे ऊपर से मटके को मारता है। क्यों? क्योंकि वह जो मिट्टी होती है ना इसमें अमुक छोटे छोटे पत्थर कंकण होते हैं और वह मटके मटके के ऊपर हाथ से मार करके और मिट्टी के अंदर कंकण पत्थर छोटे छोटे जो होते हैं उस पत्थर को उसमें से दूर करता है और उसके अंदर का जो हाथ होता है दूसरा हाथ अंदर जो होता है उसके माध्यम से धीरे धीरे अंदर से हाथ मतलब घुमाता है जैसे कि मटका टूट ना जाए, ये उसकी स्थिति रहती है। कि बाहर से मारता है अंदर से हाथ घुमाता है एकदम धीरे धीरे सॉफ्ट तली कि जिससे मटका टूटे नहीं, मटके तो टूटने नहीं देता वो। तो ऐसा अपने को लगता है ये गुरु तो बहुत भयंकर है, वो बहुत क्रोधी है, जब भी देखो तब चिल्लाते रहते डांटते रहते सबके बीच में कहते रहते ये ऐसा है वो ऐसा है, ये सेवा कर वो कर, ये वो नहीं करता है ऐसा करता है, हम लोग दूर भागते हैं गुरु से। वो जब मार रहे हैं गुरु लोग वह वास्तव में क्या कर रहे हैं, शिष्य की कमियों को दूर कर रहे हैं। जिस प्रकार कुम्हार माटी के तत्व में से पत्थर कंकण दूर करता है इस प्रकार गुरु शिष्य की कमी द्वारा उसके अंदर रहे दोषों को दूर करते हैं। तब हम लोगों को ऐसा लगता है गुरु का स्वभाव हमको कड़क लगता है, लेकिन जिस प्रकार कुम्हार अंदर के एक हाथ से मटके को टूटने नहीं देता है इसी प्रकार गुरु कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति के माध्यम से वह शिष्य को अंदर से प्रेम करते हैं, मतलब सिंचन करते हैं भक्ति का, उसको अंदर से पोषण करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। आचार्य लोग ऐसा वर्णन करते हैं, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति देखे ओहो ये तो के कब से गुरु बनने लायक हो गया है तो लग ही नहीं रहा, बाहर से तो ऐसा लगता हो कभी कभी, क्योंकि गुरु को कभी क्रोध करके देख लिया हो, गुरु को कभी शिष्य को चिल्लाते हुए देख लिया हो, तो लोग ऐसा समझते हैं कि ये गुरु बनना बनने बनने लायक नहीं है, लेकिन वह जानते नहीं है ये गुरु का एक स्वरूप है, लेकिन वह दूसरे स्वरूप में वह गुरु शिष्य का पोषण करते हैं, कृष्ण कथाओं के माध्यम से, उनके उपदेशों के माध्यम से, भगवान के नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो इस प्रकार
कृष्ण कथा के माध्यम से एक गुरु अपने शिष्य का पोषण करते हैं। जब शिष्य ठीक ठीक तरह से तप जाता है ना, शिष्य को बहुत तपाते हैं, जब ऐसा लगे कि नहीं अब बहुत तप गया है, वो अब बिल्कुल योग्य हो गया है, तब वह शिष्य को ऊपर मारते हैं हथौड़ा, जैसे लोहार, लोहार देखा है ना, लोहार का कार्य क्या है, लोहे को आकार देने का, शेप देने का कार्य लोहार का है। तो लोहार क्या करता है, सबसे पहले लोखन को, लोहे को तपाते हैं। कितना तपाते हैं, कितना तपाते हैं, जब तक लोहा अपने मूल स्वरूप को चेंज ना कर दे और मूल स्वरूप में से लाल स्वरूप, अग्नि का स्वरूप जब तक धारण ना कर ले, तब तक वह लोहार हथौड़ा मारता नहीं है। और वह देखता है कि अब लोहा गर्म हो गया है, फिर उस पे हथौड़ा मारता है, और उस हथौड़ा का परिणाम क्या होता है, वह लोहा एक सुंदर आकार के रूप में परिवर्तित होता है। इस प्रकार गुरु जो है शिष्य को पहले तपाते हैं, एकदम कठिन से कठिन परिस्थिति में रखते हैं उसको, उसका अपमान भी करेंगे सबके बीच में, इसकी कमी, इसकी दोष भी दिखाएंगे, जग जाहिर भी करेंगे कि ये मेरे शिष्य में कमी है, ये करता है, वो नहीं करता है। लेकिन जब गुरु को मालूम पड़ेगा कि अब मेरा शिष्य योग्य हो गया है, तब उसको सुंदर आकार देते हैं, है ना, एक लोहार के रूप में, लोहार की तरह। तो भगवान भी अर्जुन को तपा रहे हैं, इस श्लोक में किया है, वह क्या किया है, अर्जुन को तपा रहे हैं, हाँ, और उनके पे प्रहार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में सबसे प्रथम लाइन में कि अर्जुन कि तुम मूर्ख हो, डायरेक्ट भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तुम मूर्ख हो। मान लो यदि आप किसी के पास जाकर कहो कि मुझे तुमसे दीक्षा लेनी, सॉरी आपसे दीक्षा लेनी है, यदि वो कह रहे कि तुम मूर्ख हो, तो अपनी क्या स्थिति रहती है, भाग जाते हैं कि नहीं हम वहां से, हाँ ये गुरु है तो कौन है, बोलने का ठिकाना नहीं है उसके। अभी तक, अभी तो मैं गया हूँ इसके शरण में, मुझे कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, है ना। अर्जुन ने तो अभी तक भगवान की शरणागति अभी ली ही है, सातवें नंबर के श्लोक में, और ग्यारहवें नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण ने कह दिया उसको तुम मूर्ख हो। तो भगवान कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो मूर्ख वह जो कह रहे हैं वह वास्तव में एक हथौड़ा का प्रहार है, हथौड़ा का, है ना, अर्जुन को बराबर तपा रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन का तो क्यों हथौड़ा समान से जानते हो, भगवान अर्जुन को मूर्ख कह रहे हैं 64 करोड़ सैनिकों के बीच में। और सोचिए अपना बहुत बड़ा सम्मान यदि हो, हाँ, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने गुरु वह हजारों अपने सगे संबंधी के बीच में कह दे तो एक प्रकार का मूर्ख है, एक नंबर का, तो अपने को कैसा लगेगा, समझ में आ रही है ना। कोई व्यक्ति कह दे कि आप एक नंबर के मूर्ख हो, तो हम भी सोचेंगे कि मुझे मूर्ख कहा, मुझे, वह भी इतने सारे लोगों के बीच में, 64 करोड़ सैनिक कि जिसके मन में भगवान, सॉरी अर्जुन के प्रति कितना सम्मान था कि ये अकेला काफी है कि ये सब कौरवों का वध करने के लिए, ऐसे योद्धा लोग देख रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन को मूर्ख कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, हाँ, कितनी वैल्यू डाउन हुई होगी, लग रहा है ना हथौड़ा है वास्तव में, और जब अपने पर पड़ता है ना, जब ये गिरता है तब मालूम पड़ता है हमको, ये तो अर्जुन पे पड़ा है इसलिए हमको सुन के आनंद आ रहा है, लेकिन जब हमको अनुभव हो ना तो तब पता चलेगा कितना बड़ा प्रहार है उसका। मुझे तो अनुभव हो चुका है ऐसा। मुझे भी अनुभव है, जब अपने गुरु यदि हम, जब हमारा अपमान करेंगे, हमारी जब वास्तविक कमी दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि वह थोड़ा का मार कैसा होता है, हाँ। और अपने तो अर्जुन जैसे थोड़ी ना वैल्यू है, अर्जुन की वैल्यू अपने को समझ में कभी नहीं आएगा। 64 सैनिकों के बीच में एक क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ धनुधर के रूप में जिसका सम्मान था अर्जुन का, उस महान योद्धा को भगवान कृष्ण कह रहे हैं मूर्ख। और दूसरा, मान लो कोई दूसरे ने कहा हो तो ठीक बात है, एक सारथी अपन गाड़ी लेकर जा रहे हो और अपना ड्राइवर ऐसा कहे कि सेठ जी आप एक नंबर के मूर्ख हो, तो अपनी हालत क्या रहती उस समय, क्या होती अपनी हालत, कैसा लगेगा कि ड्राइवर अपने को मूर्ख कह रहा है, और सारथी के रूप में कृष्ण है, देखे इधर, और एक सारथी एक राजा को कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो। ये वास्तव में भगवान प्रहार कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर, हथौड़ा मार रहे हैं वास्तव में। गुरु उसके लिए और एक तीसरा उदाहरण आचार्य गण प्रस्तुत करते हैं। गुरु कुम्हार के समान है, कुम्हार के समान अंदर बाहर दोनों की ओर से शिष्य का ध्यान रखते हैं। लोहार के समान वह शिष्य को आकार प्रदान करते हैं। और तीसरा है सोनार। तो सोनार क्या करता है? सोने को यदि शुद्ध करना हो तो वह किस तरह किया जाता है? पानी से धोया जाता है, लिक्विड से धोया जाता है। सोने के शुद्ध होने की प्रोसेस को कितने लोगों ने देखा है? यहाँ पे बैठे हुए लोगों को देखा है कि सुने? अच्छा, तीन चार लोगों ने देखा, ऐसा है ना? भावी इतना है ना सोने का। सोने को अग्नि में तपा के शुद्ध किया जाता है। गोल्डन पानी से शुद्ध नहीं होता। अग्नि के अंदर सोने को तपाया जाता है और उसमें बहुत सारी अशुद्धियों होती है जो दूर होती है, और फिर इसके बाद 24 कैरेट के रूप में अपने पास आता है सोना। तो जिस प्रकार सोनार गोल्ड स्मिथ वह सोने को आग के माध्यम से शुद्ध करता है, इसी प्रकार गुरु उसके शिष्य को शुद्ध करते हैं। और यह प्रक्रिया जब चालू होती है, यह प्रोसेस जब चालू होती है, गुरु जब शिष्य को शुद्ध करते होते हैं, तब तो शिष्य को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे गुरु है या शत्रु है, हाँ, पूर्व जन्म का दुश्मन मिला है मुझे। इतने भयंकर गुरु लगते हैं उस समय जब शुद्धता की प्रोसेस चलती है होने। इस समय हम लोग गुरु के उपदेशों को पचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अपरिपक्व अवस्था में इतनी अशुद्धि, इतने अनर्थ भरे पड़े हैं जिसके कारण हमारी सही सही दृष्टि नहीं होती पहचानने की, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। और अपनी वह अशुद्धियों को दूर करने के लिए गुरु हमको बहुत तपाते हैं और वह हमको दुश्मन लगते हैं, तब तक कि जब तक शिष्य शुद्ध होके वास्तविक भक्ति रस के फल को चखता नहीं है, तब तक गुरु शत्रु लगते हैं। फिर तो बाद में इतने अच्छे लगते हैं, इतने मीठे लगते हैं, तो ऐसा ही लगता है कि गुरु के चरण ही पकड़ के रखे जीवन भर, कभी उनको छोड़ना ही नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना, ऐसी भावना उत्पन्न होती है बाद में। तत्व जब समझ में आ जाएगा फिर तो वही होता है कि गुरु को कभी जीवन में छोड़ना नहीं है। लेकिन पहले तो शत्रु एकदम भयंकर शत्रु लगते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु ऐसे नहीं होते हैं। गुरु ये सब करते हैं, शिष्य को टपाते हैं। वह क्यों करते हैं? उसको शुद्ध करने के लिए। तो देखिए, तीन उदाहरण है, क्या तीन एग्जाम्पल है। कुम्हार के रूप में गुरु क्या करते हैं? शिष्य को योग्य बनाते हैं। लोहार के रूप में गुरु क्या करते हैं? वह शिष्य को घड़ते हैं, आकार देते हैं, मतलब उसको शिक्षाएं प्रदान करते हैं। और शुद्धता अपना खुद का संग दे करके गुरु वह शिष्य की असिद्धियों को, शिष्य के अंदर जो अनर्थ होते हैं उसको दूर करते हैं, मतलब साधु संग प्रदान करके गुरु उसके शिष्य की कमियों को दूर करके शुद्धता प्रदान करते हैं और शिष्य को एक महान योग्य वैष्णव बनाते हैं। लेकिन इस कलयुग में जो लोग तथाकथित गुरु लोग हैं, अर्थात जो लोग वास्तव में गुरु नहीं है, पाखंडी है, वह लोग समाज के बीच में अपनी एक खुद की एक अलग इमेज स्थापित करना चाहते हैं, अपने एक नया स्वरूप खड़ा करना चाहते हैं। क्या कि क्रोध नहीं? मान लो आप यदि ऐसे गुरु के पास जाओ, इतनी सुंदर छवि होती है, एकदम शांत बैठे होते हैं, अपने को लगता है कि यही वाह, यही तो साक्षात विनम्रता की, शांति की मूर्तिमान स्वरूप है। और इसका सूत्र भी नीचे लिखा होता है कि जीवन में कभी क्रोध करना चाहिए नहीं, और गुरु कभी भी क्रोध नहीं करते, चाहे शिष्य कैसा भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना कर ले,
क्यों? गीता में भगवान ने कहा है कि क्रोध नरक का द्वार है, इसलिए कभी भी क्रोध करना चाहिए नहीं। ये किसका मंतव्य है? जो लोग संसार में पाखंडी गुरु लोग हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे महान गुरु शिष्य को खड़े खड़े रुलाते थे। प्रभुपाद जी का जो क्रोध था, एक भक्त के पास सुना है कि प्रभुपाद जी जब क्रोध करते थे क्रोध, तो किसी की हिम्मत भी नहीं रहती थी कि प्रभुपाद जी के सामने कुछ जवाब दे सकने की, इतना क्रोध करते थे प्रभुपाद जी। ऐसा लगता था कि अभी भी प्रभुपाद जी इसको मार मार के तोड़ डालेंगे, ऐसा लगता था, इतना क्रोध करते थे प्रभुपाद जी। तो इसका अर्थ क्या है कि वह वास्तविक गुरु नहीं है? वही वास्तविक गुरु है। इसके लिए एक प्रभुपाद जी के जीवन का एक प्रसंग आता है कि प्रभुपाद जी को जब क्रोधित होते हुए बाहर के लोग देख लेते थे ना, तो प्रभुपाद जी को पूछते कि आप इस इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हो, ये पूरी संस्था के लीडर हो आप, और तो फिर भी इतना सारा क्रोध करते हो, आपको ऐसा नहीं होता कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए? प्रश्न विचारणीय है ना। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जिन्होंने पाया रचा है, जिन्होंने बेज रचा है, वह व्यक्ति में इतना सारा क्रोध, तो लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सबके लीडर हो, और आप ही तो प्रवचन में कहते हो कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि क्रोध नरक का द्वार है, तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास और उसने कहा प्रभुपाद जी को कि संसार में कृष्ण है ही नहीं, इस संसार में कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम नराधम हो। डायरेक्ट प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम कौन हो? नराधम। नराधम क्या है जानते हो? कुछ लोग गुजराती में गाली देते हैं ना, तो कुछ लोग हिंदी में देते हैं और कुछ लोग इंग्लिश में। इसी प्रकार नराधम वह संस्कृत भाषा की एक गाली है। प्रभुपाद जी ने इसको सीधा कहा, डायरेक्टली कह दिया कि तुम नराधम हो। इसने ऐसा कहा कि कृष्ण है ही नहीं इस दुनिया में, कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा तुम नराधम हो। तो इसने कहा प्रभुपाद जी ये क्या बोल रहे हो आप? आप एक गुरु हो, एक साधु संत सन्यासी हो, आपको ऐसा बोलना चाहिए नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो वास्तव में ये भगवान ने कहा है गीता में, सातवें अध्याय का एक श्लोक है कि इसमें कहा है मूर्ख नराधम, ऐसे लोग मेरी शरण में आते नहीं है, कृष्ण ने ऐसा कहा है। प्रभुपाद जी ने कहा डायरेक्ट, तुझे अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, जाने दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुझे अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन ये कौन बोल रहे है? कृष्ण गीता में बोल रहे है, जो मेरे अस्तित्व को नहीं मानता है वे सब लोग मूर्ख है, वह सब लोग नराधम है, वैसा भगवान ने गीता में कहा है। और वह व्यक्ति तुरंत ही श्रील प्रभुपाद जी से प्रभावित हो गया। प्रभुपाद जी से प्रभावित होकर के प्रभुपाद जी की शरणागति भी ली और प्रभुपाद जी से दीक्षा भी ली। फिर एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि अरे भाई क्या हो गया कि तू कृष्ण को तो मानता ही नहीं था, हाँ, और इस साधु ने तुमको नराधम कहा, तुझे गाली दी, फिर वापिस तू उनका शिष्य हो गया? तो तब उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया भक्त लोग, वह समझने जैसा है। उसने ऐसा कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति की खोज में था कि जिसको अपने खुद की इमेज की चिंता ना हो, लेकिन अपनी खुद की चिंता किए बिना इस संसार में कृष्ण का दान करता हो, ऐसे गुरु की खोज में मैं था। और ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, इन्होंने अपने खुद की चिंता नहीं की कि मैं इसको गाली दूंगा तो ये दूसरी बार मेरे पास आएगा नहीं, जो कृष्ण कह रहे हैं वही एज इट इज उसको प्रदान किया, एज इट इज, कोई फेरफार के बिना। यह है गुरुओं का स्वभाव, यह है वास्तविक गुरु कि जो अपने खुद की इमेज की चिंता करते नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, ये सारी चिंताएं वास्तविक गुरु कभी करते नहीं है। ये चिंता किसकी होती है? जिसको शास्त्र के बारे में कुछ मालूम नहीं है, शास्त्र के सिद्धांत तत्व को जानता नहीं है वो जो व्यक्ति। ऐसे फालतू जो लोग गुरु है संसार में, पाखंडी लोग है, वे लोग सोचते हैं कि जो मैं क्रोध करूँगा तो चेले लोग कम होंगे, फिर इसको बढ़ाने में वापस मेहनत लगेगी। ये पाखंडी गुरु लोगों का कार्य है। देखो प्रभुपाद जी डायरेक्ट कहते, कोई व्यक्ति ऐसा लगता तो इसको कहते कि तुम मूर्ख हो, और खास तो साइंटिस्ट लोगों को, जो इस दुनिया में साइंटिस्ट लोगों को कहते हैं कि आप सब लोग चोर हो, जो वैज्ञानिक को कहे मतलब कहा जाए कि तुम लोग चोर हो तो। और वह भी इधर से विदेश में प्रचार करने के लिए गए थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को तो प्रचार करना था, भक्त बनाना था लोगों को, तो चोर कहा प्रभुपाद जी ने लोगों को, फिर भी भक्त बने प्रभुपाद जी से लोग। सोचिए विचार करिए, क्यों? क्योंकि वे सब लोग प्रभुपाद जी के प्रेम को समझते थे, उनके भाव को जानते थे कि ये पैसे वाला साधु नहीं है, ये वास्तविक भगवान कृष्ण की भक्ति का दान करने वाले साधु है। प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने खुद की वैल्यू की चिंता नहीं की कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे गाली देंगे, जो करना वो करे, कृष्ण ऐसा कहते हैं और वही उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। जो आप लोगों को भक्त बनना हो, प्रभुपाद जी ने कभी भी सिद्धांतों में और शास्त्रों में मिलावट नहीं की कि आप सब लोग वैज्ञानिक हो, बहुत बड़े व्यक्ति हो तो आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को नराधम नहीं कहना चाहिए मुझे। तो प्रभुपाद जी कभी भी चिंता नहीं करते थे कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। प्रभुपाद जी केवल एक ही चिंता करते थे कि सामने वाले को कृष्ण की भक्ति प्रदान करनी है मुझे, बस। और ऐसे लोग भक्त बने प्रभुपाद जी से। इसलिए अपने अपने जीवन का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अंग यह है कि पूर्ण रूप से गुरु की शरणागति ग्रहण की जाए। गुरु चाहे हमें कभी कभी डांट फटकार भी लगा दे, सबके बीच में अपमान भी कर दे, या ऐसी सेवा भी हमको दे दे जो हमको अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी चुपचाप गुरु जी का आदेश का पालन कर लेना चाहिए। एक शिष्य की इसी में ही प्रगति है। जिसको अपने खुद की इमेज की चिंता होती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसे लोगों की कभी भी प्रगति होने वाली नहीं है। प्रभुपाद जी आज एक सफल आचार्य के रूप में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के सामने खड़े हैं। क्यों? इसका कारण यह है कि इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में खुद की चिंता कभी की नहीं। तो ये गुरु का एक स्वभाव है। और शिष्य का जीवन प्रारंभ ही होता है कहाँ से? हथौड़ा से। यह हथौड़ा याद रखने का। शिष्य के जीवन का प्रारंभ ही एकमात्र होता है गुरु के प्रहार से। गुरु जब तपाते हैं उसके ऊपर प्रहार करते हैं, वही शिष्य की वास्तविक प्रगति है और शुरुआत ही उसकी जीवन की वहां से होती है। तो अब इस श्लोक का दूसरा विषय है कि भगवान इधर अर्जुन को तपा रहे हैं, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुझे शोक करना चाहिए नहीं, जो तुझे पंडित बनना हो तो शोक करना नहीं चाहिए। तो एक प्रश्न होता है कि शोक का असली विषय क्या है, है ना? शोक कहाँ करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। शोक एक प्रकार से भावना का विषय है। कहाँ करना, किसके लिए करना, कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये बात जिसको मालूम नहीं है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी पंडित बन नहीं सकता। वह व्यक्ति कभी भी दुखों से मुक्त होने वाला नहीं है। शोक मतलब क्या? एक भावना, एक फीलिंग, लागणी। जो हम लोग उस लागणी को प्रकट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उस लागणी को हम मारेंगे। इसका अर्थ होगा कि हम लागणी को मार रहे हैं, हम भावना को, हमारी भावना को मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस भक्ति राज्य में, इस भक्ति के मार्ग में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। कृष्ण भावना नाम प्रभुपाद जी ने इसलिए दिया कि हमारे अंदर जितनी भावनाएं हैं, जितनी लागणी है, वो सभी भावनाओं का मूल्य है, उसका वैल्यू है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस वह नहीं है कि लागणियों को मारना। कृष्ण कॉन्शियस का अर्थ यह है कि हमारी लागणियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, उनको जागृत करना। तो आप मानिए कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा हमने गीता में से सुना है। अर्जुन ने भगवद गीता पूरी सुनने के बाद कृष्ण को पूछा कि किसको मारना है, फिर भगवान के आदेश के अनुसार क्रोध करके सारे कौरवों का वध अर्जुन ने कर दिया। महाभारत में वर्णन है कि गीता पूरी होने के बाद क्या हुआ, विचार करिए इसके पे। जो कृष्ण अर्जुन को क्रोध नहीं करने के लिए समझा रहे हैं, वही अर्जुन ने गीता सुनने के बाद 64 करोड़ सैनिकों का वध कर दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्योंकि क्रोध के बिना तो कभी युद्ध होता नहीं है। लागणियों को मारने का नहीं है, लागणियों को कहाँ लगाना है ना, वो समझने का प्रयास करना है। अब देखिए कि इधर अर्जुन ने कौरव के ऊपर क्रोध दिखाया, हनुमान जी को भी क्रोध आया था और उन्होंने क्या किया, लंका जला दी। तो अर्जुन और हनुमान जी दोनों ने अपना जो क्रोध है उसको भगवान की सेवा में लगाया। एक ने अधर्मियों का विनाश करके भगवान की सेवा की और हनुमान जी ने भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए लंका को जला दिया। तो देखिए जो भक्त लोग है तो उनके अंदर जो काम क्रोध लोभ आदि अनर्थ होते हैं ना, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, और उन्होंने वास्तव में लगाया भी है। तो अर्जुन के द्वारा शोक हो रहा है और दूसरा शोक युधिष्ठिर महाराज के द्वारा हो रहा है। अर्जुन ने शोक कब किया, युद्ध से पहले, सब लोग जीवित है, कोई मरा नहीं है। तो अर्जुन जीवित के लिए शोक कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज ने भी शोक कब किया, युद्ध के सब लोगों को मर जाने के बाद। भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें-8वें अध्याय में यह सारा प्रसंग वर्णित है। अर्जुन जीवित के लिए शोक कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज मृत के लिए शोक कर रहे हैं। तो प्रश्न यह खड़ा हुआ कि जीवित होते हैं तब शोक करना चाहिए, तो मर गए हो इसके बाद शोक करना चाहिए, तो शोक किसके लिए करना चाहिए? तो वास्तव में भगवान क्या कह रहे हैं, अब इधर 3 मुद्दे खड़े हुए हैं। अर्जुन जीवित के लिए शोक कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज मृत्यु के लिए, और कृष्ण कह रहे हैं कि जीवित हो या मृत, दोनों में से किसी के लिए भी शोक करना चाहिए नहीं, दोनों में से किसी का भी शोक नहीं करना, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन शोक होता है कब, जब जीवित होते हैं तब भी और मरने के बाद भी होता है शोक। किस प्रकार, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरावादि दुख दोषानुदर्शन, कि व्यक्ति 4 प्रकार से संसार में दुखों का दर्शन करता है, जन्म के रूप में, दूसरा मृत्यु के रूप में, जरा और व्याधि के रूप में। ये 4 जगह पे व्यक्ति अपने जीवन में शोक का दर्शन करता है। तो प्रश्न होता है कि जन्म के समय किस प्रकार से शोक होता है, लेकिन जन्म में तो सब लोग खुश होते हैं कि हमारे घर पे एक बालक का जन्म होने वाला है। जन्म के अंदर शोक करता है बालक, जो बालक जन्म लेने वाला है वह शोक करता है। देखिए श्रीमद् भागवतम स्कंग 3 कपिल देवहूति संवाद, कपिल भगवान ने उसमें वर्णन किया है कि जन्म के समय में जो दुख होता है बालक को, वैसा दुख मृत्यु के समय नहीं होता, मतलब मृत्यु के समय से कहीं अधिक गुना ज्यादा दुख बालक को जन्म के समय पे होता है माता के गर्भ में। और उस दुख से बचने के लिए जीव भगवान को प्रार्थना करता है, सुना है ना भागवतम में कि जंतु उवाच, ऐसा आता है श्लोक जिसमें जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान है कि हे प्रभु मुझे इधर से बचाइए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं बाहर आकर के आपकी भक्ति करूंगा, इस प्रकार भगवान को प्रार्थना करता है जीव गर्भ के अंदर, शोक करता है माता के गर्भ में बालक। और उस बालक का जब जन्म होता है ना, तब माता भी दुखी होती है, माता भी शोक करती है। तो जन्म के प्रसंग में माता और बालक के अंदर शोक देखने को मिलता है। भागवतम में 3रे स्कंद के अंदर इसमें विस्तार से वर्णन है इस चीज का, दूसरा है मृत्यु, उसका तो शोक हम करते ही हैं, किसी के मर जाने के बाद रोते हैं हम, अपना दुख प्रकट करते हैं उसके प्रति। और जरा व्याधि, जरा माने वृद्धावस्था, कि वृद्ध हो जाने के बाद व्यक्ति कैसे कैसे दुखों को भोगता है, उसका भी अनुदर्शन हम सब लोगों को इस संसार में हो रहा है। और हर रोज अपने खुद का अनुभव है अपना रोगों के बारे में, कि जब हमें कोई रोग हो जाता है उस समय हमें कितना कष्ट होता है। तो ये है जीवित व्यक्ति के लिए शोक का अनुदर्शन, और इस प्रकार से शोक करना चाहिए नहीं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवित व्यक्ति के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसका कारण, पंडित लोग क्यों शोक नहीं करते, क्योंकि पंडित लोग देखते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ये जो शोक है वह शोक मात्र शरीर के स्तर पे है, लेकिन पंडित जो है वह तो सबको आत्मा के स्तर पे देखता है। आत्मा को तो कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता नहीं है, इसलिए पंडित व्यक्ति कभी जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता नहीं है। तो समग्र संसार को जो वास्तव में पंडित व्यक्ति है वह समग्र संसार को आत्मा की दृष्टि से देखता है। किसकी दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से। इसलिए जीवित व्यक्ति के लिए पंडित कभी भी शोक करता नहीं है। तो कौन शोक करते हैं? जो लोग मूर्ख होते हैं, जो शरीर के स्तर पे होते हैं, देहात्म बुद्धि के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, वही लोग वास्तव में शोक करते हैं। जो लोग आत्मा और शरीर के बीच में जो संबंध को जान लेते हैं वह कभी भी शोक करते नहीं है। तो प्रश्न होता है कि शोक कब करना चाहिए, कब करने का? क्योंकि जीवित के लिए तो मना किया गया है, तो शोक को मारने का तो मना किया गया है, बराबर है? शोक को मारने का नहीं है, तो कब करने का शोक को? तो कहते हैं कि जब जीवन में भगवान की विस्मृति हो। भगवान जब जीवन में मन और बुद्धि से निकल जाए, भगवान की जब जीवन में विस्मृति हो, तभी जीवन में शोक होता है, तब भी होता है। भक्त की संगति जीवन में जब छूटे, भगवान के भक्तों से जब अलग होना पड़े, तब जीवन में दुख आता है और शोक आता है। और अपन उस समय तो परम प्रसन्न का अनुभव करते हैं हम, कि हाँ मांड मांड ये सब भक्त लोग गए, हाँ मांड मांड उन लोगों ने लेक्चर प्रवचन खत्म किया। देखिए कि वास्तविक शोक करने की स्थिति है कि जब भगवान और भगवान के भक्त की संगति छूटे। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं इसके विषय में? युगा इतम निमिषेण चक्षुक्षा प्रावुक्षा इतम शून्या इतम जगत सर्वम गोविंद विहरमे। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में एक निमेश काल जितने समय तक भी यदि मैं चूक जाऊँ तो संपूर्ण जगत मुझे शून्य जैसा प्रतीत होता है। किसके जैसा? शून्य जैसा दिखता है। निमेश मतलब आंख की एक पलक जब एक बार नीचे गिरती है, उस समय को मतलब एक छोटे से क्षण को निमेश कहते हैं। और इतना समय जब भगवान गोविंद भगवान का विस्मरण मेरे से हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि संसार शून्य हो गया। ये है महाप्रभु की स्थिति। शोक करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कि एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन में कभी भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण नहीं होना चाहिए। और महाप्रभु और राय रामानंद जी इन दोनों के बीच में गोदावरी के तट पे संवाद हुआ था। वह संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा श्री राय रामानंद जी को कि हे राय रामानंद जी, कि संसार के अंदर भक्त की सबसे कठिन परिस्थिति, सबसे कठिन समय क्या है? भगवान के जो भक्त है उसके जीवन की सबसे बड़ी दुखद परिस्थिति क्या है? तब राय रामानंद जी कहते हैं कि भक्तों के संग से अलग होना पड़े वह वास्तव में जीव का संसार में सबसे बड़ा दुख है। भक्त से जो लोग शुद्ध भक्त है उनसे, कारण क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं ना वह कभी भी श्री कृष्ण को भूलना चाहते नहीं है, एक क्षण के लिए भी है। ये भक्त की स्तुति है। इसलिए हम लोगों को भी ये साधु संग कीर्तन कथा और इस सब की वैल्यू समझनी हो न तो एक बार भक्तों के संग से बाहर निकलना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा, तब इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि भक्तों की कितनी महिमा है, कीर्तन की कितनी महिमा है, भक्तों के बीच में हरि चर्चा की कितनी महिमा है। फिर हमको पता चलेगा कि ये सत्संग हरिनाम
और भगवान के नाम का क्या वैल्यू है। थोड़ा बाहर निकलेंगे तो मालूम पड़ेगा, तो पता चलेगा, थोड़ी बुद्धि खिलेगी, थोड़ी बुद्धि खुलेगी कि भक्त जीवन में यदि नहीं होते तो कितनी मुश्किली जीवन में आती है। अरे हमारे जीवन में हजारों बार भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण होता है, फिर भी जीवन में कभी शोक हुआ एक क्षण के लिए भी? कभी आंसू निकले आँख में से कि अरे रे आज तो 10 घंटे तक मुझे भगवान कृष्ण की याद ही नहीं आई? पर हम लोग कहते हैं कि हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं। यदि किसी शुद्ध भक्त के सामने यदि आप कोई शर्त रख दिए, मतलब मानो किसी शुद्ध भक्त के सामने एक शर्त रख दी जाए कि पूरी दुनिया हम आपके अकेले के नाम पे कर देंगे, इसके बदले में आपके एक ही कार्य करना है, क्या एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाना है, भगवान की विस्मृति करनी है केवल एक क्षण के लिए आपको? तो जो शुद्ध भक्त होता है न, वह संपूर्ण पृथ्वी का राज छोड़ देगा, लेकिन भगवान का विस्मरण एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकता। ये शुद्ध भक्तों की बात हो रही है। मान लीजिए ये ऑफर हमको मिली हो, तो विचार करें कि संपूर्ण पृथ्वी और इसके बदले में एक क्षण के लिए सिर्फ भगवान को भूलना। अपन चलो माला तो कल कर लेंगे, लेकिन मेरे को पृथ्वी दे दो पूरी, आज ना हो तो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, लेकिन मुझे वो चाहिए। ये हमारी कैपेसिटी है, ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि कोई लालसा नहीं है भगवान के प्रति हमारी। लेकिन शुद्ध भक्त संपूर्ण पृथ्वी का राज्य छोड़ देगा, लेकिन भगवान को भूलना चाहता नहीं है, एक क्षण मात्र के लिए भी नहीं भूलना चाहता, एक क्षण मात्र के लिए भी। हाँ, ये बात अभी अपरिपक्व अवस्था में हम लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह शुद्ध भक्तों के लेवल की बात हो रही है ना। वह तो जब हम बनेंगे तब समझ में आएगी ना, उस स्तर पर पहुँचेंगे तब समझ में आएगा। तो संसार की समस्याओं को एक साइड में रखा जाए और दूसरे साइड भगवान को भूलने की ऑफर रखी जाए, और एक शुद्ध भक्तों को कहा जाए कि आपके लिए ये समस्या इम्पोर्टेंट है, महत्व की है, कि भगवान को भूलना वो महत्व का है। लेकिन एक शुद्ध भक्त अपनी खुद की सारी समस्याओं को छोड़ देगा, लेकिन भगवान को छोड़ना चाहता नहीं है, एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलना नहीं चाहता शुद्ध भक्त। लेकिन हमको यदि पूछा हो कि सत्संग में क्यों नहीं आए थे, कि प्रभु जी मेरी जॉब चालू थी क्या करूँ, प्रभु जी मेरे घर पे मेहमान आए थे क्या करूँ, ये हमारी स्थिति है। हम लोग इस संसार की प्रत्येक समस्याओं के लिए कृष्ण को छोड़ रहे हैं, और इच्छा क्या है, गोलक वृंदावन धाम की प्राप्ति करने की। स्थिति देखिए हमारी, बारम्बार कृष्ण का त्याग करके जा रहे हैं जीवन में। मेहमान आए, कृष्ण को त्याग दो, भूख लगी पहले खाना खा लो फिर माला, जॉब जाना है तो चलो बाद में माला, बिजनेस को जाना है कृष्ण को छोड़ो, शादी में जाना है तो कृष्ण को छोड़ो। जीवन के प्रत्येक एंगल में हमारे से कृष्ण छूत रहे हैं, फिर भी हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम भक्त है, हम वैष्णव हो। त्याग अपने को हकीकत में संसार का करने का है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं श्री भगवान का। अरे हमको पता है, शास्त्र के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से समझ लिया है कि संसार में आत्मा का कल्याण करने का एक ही मार्ग है मात्र, वह है भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान के नाम का जप। तो वह जप को छोड़ करके, कथा को छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके दुनिया भर के काम हम करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का नाम नहीं लेते, और हम इच्छा रखते हैं कि भगवान हमारे पे कृपा करेंगे। किस तरह संभव है ये? त्याग कृष्ण का नहीं करना है, त्याग इस संसार की विस्तृत वासनाओं का करने का है, संसार में फालतू कामों का त्याग करने का है, कि जिस कारण से हम भगवान की और भगवान की भक्तों की संगति से छूत रहे हैं, भगवान के और भगवान के भक्तों की संगति जिस कारण से हम नहीं ले पा रहे हैं, उस वस्तु का त्याग करना है। और हम त्याग करते हैं मंगला आरती का, त्याग करते हैं हरिनाम जप का, त्याग करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का, जिससे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये पाँचों पाँच और सातों सात महासाधन है, ये व्यक्ति जीवन में कर ले तो संसार से अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अब हम सोचेंगे कि हमारा और कृष्ण के साथ कितना सेटिंग है। लगता है कोई क्षेत्र हमारे, हमारा भगवान कृष्ण के प्रति कोई सेटिंग हो ऐसा, हमारा कोई मेल होता है क्या भगवान के साथ? और एक तीसरा उदाहरण भी आचार्य इसके लिए वर्णन करते हैं कि मान लो दो पिंजरे होते हैं, उसमें से
एक पिंजरे में जंगली वन्य पशुओं को रखा जाए, जैसे शेर, बाघ, भालू, दीपड़ा, चीता आदि जंगली पशुओं को। दूसरे पिंजरे में संसार की भोग भोगने वाले वस्तु रखी जाए, जैसे कि एसी, गाड़ी, बंगला, फ्रिज, मोबाइल, बीबी बच्चे आदि। और फिर बाद में चॉइस दी जाए कि इस दोनों में से कोई चॉइस करना है कि हमें किसी एक पिंजरे में जाना है, तो हम कौन से पिंजरे में जाएंगे? कौन से पिंजरे में जाएंगे? पशु वाला, तो खोखा वाला, ओ सांसारिक वस्तु वाला। तो इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं हम जानते हैं, ये उनका ही उदाहरण है। महाप्रभु कहते हैं वो पशु वाला जो पिंजरा है ना, हिंसक पशुओं वाला, उसमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग जाएंगे, वो हिंसक पशु हमको फाड़ के मार डालेंगे, खा जाएंगे, हम शरीर छोड़ेंगे, लेकिन हमारी भक्ति का नाश होने वाला नहीं है। नमे भक्तिया प्रणश्यति, भक्ति नाश नहीं होगी उससे। आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, वहाँ वापिस से हमको भक्ति की संगति मिलेगी, भक्ति का मौका मिलेगा। लेकिन वो सांसारिक भोग भोगने वाले पिंजरे में गए गलती से भी, तो भौतिक विषय वास्तव और भौतिक विषय की संगति व्यक्ति के भजन भजन का नाश करती है, भक्ति का नाश करती है। तभी महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में यह श्लोक कहा है, असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। क्या? असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार, कि वैष्णव का जो है केवल एक ही आचरण होना चाहिए कि जो वस्तु भक्ति में बाधक है, जो वस्तु भक्ति में पतंग कराती है, उस वस्तु का सर्वथा के लिए त्याग करना। और हम लोग ऐसा ही घर में ला ला के इकट्ठा करते हैं, इसलिए तो हमको मन नहीं लगता है, टाइम भी नहीं मिलता माला करने का, प्रभुपाद जी की बुक से पढ़ने का, भगवान की कथा सुनने का आदि आदि। समय हमारे पास नहीं है, इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण यह है, असत वस्तुओं को बाहर से ला ला के घर में इकट्ठी करते हैं, और उस व्यक्ति को संभालने का, इसका मेंटेनेंस भरने का, और इसको मेंटेन करने में हम भगवान की भक्ति से छूट जाते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, असत वस्तुओं का हर हमेश के लिए त्याग करना चाहिए, और सत्संग में जाने के लिए लालायित रहना चाहिए। लाल नहीं होना चाहिए, लाल नहीं, लाल मतलब क्रोधित नहीं होना चाहिए, लालायित होना चाहिए। पर विशेष रूप से हमें भगवान के सेवा के प्रति रुचि होनी चाहिए, कि हम रात दिन संसार की सेवा करते हैं, माया की सेवा करते हैं, कि दिन में रविवार के दिन तो मंदिर में जा करके 2-3 घंटे की भगवान की तो सेवा कम से कम करें, ऐसे लालसा हृदय में होनी चाहिए हमें। और इस प्रकार जीवन में शोक होना चाहिए, कब? जब भगवान की विस्मृति कुछ क्षण के लिए भी जीवन में हो, तब व्यक्ति को शोक होना चाहिए। जिस प्रकार गोपी लोग शोक करते हैं वृंदावन में, कृष्ण के विरह में गोपी लोग शोक करते हैं। प्रहलाद महाराज का श्लोक भागवतम में, नरसिंह देव ने पूछा प्रहलाद महाराज को कि हे प्रहलाद, मैं तुझसे इतना प्रसन्न हो गया हूँ, फिर भी तुझे तेरे हृदय में दुख हो रहा है, किस बात का? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंहदेव भगवान को कि हे प्रभु, इस संसार के अंदर शरीर धारण किए हुए प्रत्येक जीव आपका भजन नहीं करते, आपकी भक्ति नहीं करने के कारण वे लोग नरक में जा रहे हैं, उसका मुझे दुख लगता है। ये भक्त लोग शोक करते हैं। क्या शोक करते हैं? कि संसार के जीव भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भक्त लोग दुखी होते हैं। शोक करना चाहिए प्रहलाद महाराज की तरह। रुक्मणी जी ने भी शोक किया था जब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा था ने कि हे प्रभु, आप मुझे लेने के लिए आइए। तो रुक्मणी जी ने उस पत्र में लिखा था कि हे प्रभु, यदि जो आप मुझे कल सुबह तक लेने के लिए नहीं आएंगे, तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। मृत्यु को पसंद किया उन्होंने। ये शोक रुक्मणी माता कह रही है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। अर्जुन का भी शोक था कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे, इस धरा पे अपनी लीला को अप्रगट करके अपनी प्रगट लीला धाम में चले गए थे, गोलक वृंदावन धाम में, तब अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज के सामने शोक किया था कि हे भाई, कि ये गांडीव धारी अर्जुन और इस गांडीव धारी अर्जुन का रथ अब कोई काम का नहीं है। क्यों?
क्योंकि कृष्ण इस पृथ्वी पे नहीं है तो ये सारी वस्तुओं को क्या काम की, क्योंकि ये सब वस्तुओं की महत्ता तब तक है जब तक कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट है। अर्जुन भी शोक कर रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा अर्जुन को कि इतना सारा वीरा सता रहा है तुमको, तो तुम जीवित क्यों रहे हो अभी तक, किस प्रकार से, मतलब किसकी कृपा से तुम अभी तक जीवित हो। कि कहते हैं अर्जुन कि वही कृष्ण के मुख से जब श्रीमद् भगवद गीता मैंने सुनी थी, इसलिए मेरा प्राण इस शरीर में तक रहा है, इसलिए मैंने प्राण धारण किए हुए है शरीर में अभी तक। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के सामने अर्जुन शोक कर रहे हैं कि गीता के आधार से मैं जीवित हूँ, नहीं तो मैं कब से मर गया होता, ऐसा शोक कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के सामने अर्जुन कि कृष्ण के बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है संसार में। तो ये सारे शोक शास्त्र में बताए गए हैं, ये सारे शोक वास्तव में तमोगुण नहीं है, ये सारे आसक्ति के कारण शोक नहीं है, ये भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के कारण शोक है, और इसी को कहा जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। शोक होना चाहिए, शोक होना चाहिए संसार में केवल गोविंद के लिए और गोविंद के प्राण प्यारे भक्तों के लिए। तो हमारी भक्ति के आधार पर शोक का लेवल मापा जाता है। जिस वस्तु में हमारी आसक्ति जितनी अधिक होती है, उतनी अधिक मात्रा में उस व्यक्ति के प्रति शोक भी इतना अधिक मात्रा में ही होता है हमारा। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए यदि हमने अपने बच्चे को एक खिलौने की मर्सिडीज गाड़ी ले दी और खेलते खेलते वो तोड़ डाले उसको और कहे कि देखिए पिताजी ये टूट गई, तो पिताजी क्या कहेंगे, कोई बात नहीं दूसरी ले देंगे। दुख नहीं लगता उस समय, लेकिन इसके पिताजी की मर्सिडीज उसने तोड़ डाली हो तो, हाँ जो ओरिजिनल होती है वो वाली, तो जब वह टूटे ओरिजिनल वाली अपने पिताजी की मर्सिडीज, तो इस पिता के हृदय में कितना शोक होता है उस समय। अपने बच्चे की टूट गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी खुद की ओरिजिनल टूटी तो भयंकर शोक होता है, भयंकर दुख प्रकट होता है। इस प्रकार वस्तु के आधार पर हमारा शोक कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन वास्तविक जो पंडित होता है वह किसी भी वस्तु के लिए शोक कभी जीवन में करता नहीं है। हमारे अंदर इस वस्तु के प्रति आसक्ति है या नहीं यह कब मालूम होता है? कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी वस्तु हमारी इस संसार में चाहे गुम जाए, चाहे कोई लेके चला जाए, चाहे टूट जाए, फिर भी किसी भी प्रकार से शोक ना हो हमारे अंदर, हम विचलित ना हो, तब माना जाएगा कि हमारी उस वस्तु के प्रति कोई शोक या आसक्ति नहीं है। शोक के चिन्ह हृदय में प्रकट ना हो उस समय माना जाएगा कि हमको हमारी इस वस्तु के अंदर आसक्ति है या नहीं, कि हम लोग पंडित बनने लायक है कि नहीं। तो अर्जुन का इधर अभी जो शोक है कैसा है मालूम, अर्जुन शोक कर रहा है कृष्ण को छोड़ के सबके लिए। भीष्म पिता, प्रभु वह मेरे पितामह है, द्रोणाचार्य, प्रभु वह मेरे गुरु है, दुर्योधन वो तो मेरा भाई है। तो अर्जुन को इधर सबके लिए शोक हुआ, लेकिन पहले दूसरे दोनों अध्यायों में कहीं पर भी हमने ऐसा सुना कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के लिए भी शोक हुआ हो, कहीं पर भी हमने ऐसा सुना कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भी कहा हो कि गोविंद मुझे आपके लिए भी शोक हो रहा है। तो अर्जुन को शोक हो रहा है सामने खड़े हुए दूसरे लोगों के लिए, और वह भी वापस जीवित थे, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए ना कि रोना तब होता है, शोक तब करना होता है उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद, लेकिन अर्जुन कब रो रहे हैं, अभी तक तो वे लोग सामने खड़े हैं और वापिस अर्जुन कह रहे हैं अरे अरे सब लोग चले जाएंगे। तो आप देखिए अर्जुन को कितना शोक हो रहा है ना, अभी तक वे लोग मरे नहीं है, मरने वाले हैं, फिर भी अर्जुन कह रहे हैं मेरे पितामह मरेंगे, मेरे गुरु मरेंगे, मेरे भाई लोग मरेंगे। अरे भाई वो मरने वाले हैं, अभी उनकी देर है, सब लोग जीवित हैं। आप लोगों ने ऐसा व्यक्ति कभी देखा? आप लोग यदि इसके घर जाए और वो बैठा बैठा रो रहा हो और आप लोग उससे पूछे कि लो भाई तू क्यों रो रहा है, और वो कहे कि मेरे पिताजी चले गए हैं, तो हम लोग उससे कहेंगे ना कि ये भाई अभी तो मरे नहीं है, मरने वाले हैं, लेकिन अभी तो देर है ना, तो जीवित के लिए शोक करना चाहिए नहीं, लेकिन अपन कर रहे हैं। कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। इसी प्रकार यदि हम लोगों को शोक करना है जीवन में, दुखी होना है, तो केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए होना है, उनके भक्तों के लिए होना है, हमारे किए गए कर्मों के ऊपर पश्चाताप हमें करना है कि मैंने पूर्व जन्म में कितने पाप किए, भक्ति में आने से पहले पूर्व के जीवन में
कि मेरा जीवन ऐसे ही जा रहा है, कि शास्त्र के बताए अनुसार मैं जीवन को ढाल रहा हूँ कि नहीं। तो नहीं ढाल रहे तो इसके लिए शोक होना चाहिए हमें। तो सार इस श्लोक का यह है, एसेंस यह है इस श्लोक का, कि जो व्यक्ति आत्मा की कीमत को समझता है वह वास्तव में पंडित है, और जो शरीर की कीमत को समझता है वह पंडित नहीं है। तो अर्जुन शोक कर रहे हैं शरीर के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि पंडित जो होता है वह कभी भी शरीर के लिए शोक करता नहीं है। तो किसके लिए करता है? वह केवल आत्मा के लिए। तो दो विषय है इस श्लोक में, कि जीवित के लिए शोक नहीं करना चाहिए और मृत व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। तो जीवित के लिए नहीं करना चाहिए वह समझ में आ गया, तो मृत के लिए क्यों नहीं करना चाहिए वह भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में प्रारंभ करेंगे आत्मा के विषय में ज्ञान देने के लिए। तो इस प्रकार इधर ही प्रवचन को विराम देते हैं। तो सब भक्तों का धन्यवाद। बोलो श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप ग्रंथ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।